نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے کتاب الجنائز میں سے آج ہم جو ٹاپک لیں گے وہ ہے تعزیت کے مسائل، باب و تعزیتی. تعزیت کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جائے، کسی مسلمان کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف ہو، تو دوسرے مسلمان بھائی بہن یا اس کے ملنے والے اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. یہ وہی لفظ ہے جس کو ہماری زبان میں کنڈولنس بھی کہتے ہیں، اور سم ٹائم اس کو لوگ کہتے ہیں ہم افسوس کرنے جا رہے ہیں، پرسے کے لیے جا رہے ہیں، اور دکھ سکھ تو زندگی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا. عموماً ہم کسی کے گھر کب جاتے ہیں جب کوئی اس کو دکھ ملتا ہے، تو ہم موسٹلی کیا انٹینشنز رکھتے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے گھر میں آئے تھے، فلاں موقع پہ ہمیں بھی جانا ہے. سم ٹائم ہم رشتہ داریاں نبھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، سم ٹائم ہم کسی کو انکار نہیں کر سکتے اس لیے بھی جاتے ہیں، اور سم ٹائم واقعی ہم اس لیے بھی جاتے ہیں کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو دکھ ہوا ہے، صدمہ ہوا ہے، تو ہم ان کی کچھ مدد کریں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کنڈولنس یعنی تعزیت کرنے کا کیا حکم ہے. تو سب سے پہلی چیز اس بارے میں جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ تعزیت کرنا سنت ہے. سنت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو جا کر ان کے کو تسلی دیا کرتے تھے، اور ان کو اس چیز کا احساس دلاتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس کی تعزیت کی. سوچیے ذرا، یعنی کوئی دکھ میں ہے اور آپ نے جا کر اس کو تسلی کے چند الفاظ بول دیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سبز حلہ پہنائیں گے، یعنی گرین ڈریس پہنائیں گے جس پر قیامت کے دن رش کیا جائے گا. جیسے ہم شادیوں میں بیاہوں میں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ کیسے آتا ہے، تو فرمایا کہ یحبر بھا، یحبر کے لفظ آتے ہیں کہ لوگ اس پر رش کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ماں یحبر، یہ یحبر کیا ہے، یعنی رش کیا ہے؟ تو فرمایا تغبت، یعنی رش کیا جائے گا. خطیب اور ابن اساکر کی یہ روایت ہے. کیا پتہ چلا کہ جب ہم فار دی سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، نمبر ایک، اچھی انٹینشن کے ساتھ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تسلی دینے یعنی گڈ انٹینشنز کے ساتھ جب کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو خوبصورت ڈریس پہنائیں گے، اور وہ اتنا خوبصورت ڈریس ہوگا کہ دوسرے لوگ اس پہ رش کریں گے، مراد ہے کہ کبھی یہ ہمیں مل جائے. تو پہلی چیز آج ہم سب کے پاس آ گئی کہ آج کے بعد کہیں بھی آپ جائیں، گلی میں، محلے میں، ریلیٹیوز میں، تو نیت یہ رکھیے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ کام کرنا ہے. دیکھیے چھوٹا سا کام ہے لیکن نیت کے فرق سے کام بدل جاتا ہے. مثال دیتی ہوں کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے گھر بنایا، تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو کہا کہ یہ کھڑکی ادھر کیوں بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہاں سے ہوا آئے گی. تو آپ نے کہا کہ ہوا تو آنی ہی تھی، اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں زیادہ اجر ملتا. تو دیکھیے کام تو ایک ہی ہے، کھانا تو کھاتا ہی ہے نا. نیت یہ کر لیجئے کہ کھانا اس لیے کھا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے عبادت کر سکوں، خدمت کر سکوں. تو مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہر کام میں اس کو اجر ملتا ہے. تو لہٰذا آج کے بعد جہاں بھی جائیں کبھی یہ نہ کہا کریں ارے اب جانا پڑے گا، وہ بھی تو آئے تھے، ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ آئے تھے، اچھا پھر کھانا بھی دینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دیا ہے. بس جب ہم نے نیکیوں اور عبادات کو بھی رسم بنا لی ہے، اور پھر ہمارے یہاں کچھ ٹریڈیشن چل پڑے کہ تعزیت ہوئی، اب بہو کے میکے سے کھانا آئے گا، آج کس کے گھر سے آیا، پھر کمپٹیشن ادھر سے کیا آیا، اچھا ادھر دال آ گئی، ادھر سے چکن آیا تھا، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سنت طریقے سے جب یہ کام کریں گے اور کھانا بھیجنا آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت جو بھی سننا ہے وہ یہ سوچ کے سننا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اس موضوع پہ بات سننے کا جس پہ عموماً بات نہیں ہوتی، رائٹ. پھر اگلی چیز اس کے بارے میں کیا ہے کہ میت کے ورثہ سے تعزیت کے لیے مسنون الفاظ موجود ہیں. ابھی میں بولوں گی، آپ بھی میرے پیچھے بولیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ موسٹلی ہم کرتے کہ بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، कभी जाते ही लिपट के गले से रोने लग जाते हैं, पीछे से ठीक ठाक जा रहे होते हैं, जो ही घर वालों को देखा घर करीब आया जाके यूं शोर मचा के चीख मार के रोए कि जैसे हमसे ज़्यादा किसी को दुख नहीं है। या कभी लोग बैन करते हैं, कभी गलत बातें करते हैं। पिछले हमने अपने सेशन में देखा था कि इस तरह बैन करना, नौहा करना, या ये कहना हाय मैं मर गई, ये कहना कि मैं लुट गई मैं मर गई, ये दुरुस्त नहीं। क्योंकि जिस घर में कोई मैयत होती है तो 3 दिन तक फरिश्ते हर बात पे आमीन कहते हैं। तो हमेशा अच्छे लफ्ज बोलने चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, तो मसनून दुआएं। इसी तरह आप देखिए कि जब मैयत वाले घर में जाते हैं तो मैयत के लिए दुआ भी करनी है और अपने लिए भी करनी है, क्योंकि फरिश्ते आमीन कहेंगे। पीछे भी ये बात हुई कि ये मौका दुआओं की कबूलियत का मौका बना लिया करें। आपको शहर में किसी की भी डेथ की खबर मिले ना, अगर आप फारिग हैं तो चले जाएँ। नंबर एक, ताज़ियत करने का अजर, सब्र की तलकीन करेंगे। फिर दूसरी बात है कि आप वहाँ बैठ के अपनी दुआएं कर लें, ये दुआओं की कबूलियत का एक वक्त है। इसी तरह जब मैयत मौजूद होती है घर में तो उसके पास बैठकर भलाई की बातें करनी चाहिए। अब इन सारी बातों की दलील एक हदीस है हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा से। फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, इस वक्त अबू सलमा की आंखें पथरा चुकी थी। पीछे इनका तस्करा सुना था ना आपने पिछले सबक में, कि ये वो खूबसूरत जोड़ा था कि जिन्होंने शुरू में हिजरत की और शौहर जो थे नबी सल्लम से जो बात सीख के आते घर में आके बीवी को सिखाते, और उन्होंने दुआ सीखी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलफली खैरा मिन्हा, कि जिसको कोई दुख मिले तो वो इस दुआ को पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी उसका बेहतर अल्टरनेट देगा और आखिरत में अजर देगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद अबू सलमा की अपनी डेथ हो गई। यह अब उस वक्त का वाक़ा कि बिल्कुल उनकी आंखें पथरा चुकी थी। नबी सल्लम आए, आपने अबू सलमा की आंखें बंद की। ये भी पीछे हमने पढ़ा कि जब कोई फौत हो तो उसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि रूह का पीछा करती है आँख, तो बस दफ़ा आँखें फिर ऊपर चढ़ जाती हैं और वाइट हिस्सा आ जाता है सामने और थोड़ा सा हॉरेबल लगता है। तो अल्लाह के नबी ने बंद किया और फिर फरमाया कि जब रूह कब्ज़ की जाती है तो नज़र इसका पीछा करती है, यानी इसका तआक़ुब करती है। घर वाले इस बात पर रोने लगे। ज़ाहरी बात है कि अपने सामने एक जीते जागते चलते फिरते इंसान को इतनी बेबसी की हालत में देखना इंसान के लिए नाकाबले बयान होता है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने मरने वालों के बारे में भली बात कहो, यानी इस वक्त उनकी तारीफ करो, क्योंकि तुम जो कुछ कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने अबू सलमा के लिए दुआ की, और वो दुआ कितनी खूबसूरत थी कि जिसमें अल्लाह के नबी ने उनका नाम लिया कि अल्लाहुम्मा ग़फिर ली अबी सलमत वरफ़ दरजतहु फ़िल महदीजीन वख़लुफ़हु फ़ी अक़बिही फ़िल ग़ाबिरीन वग़फिर लना वलहु या रब्बल आलमीन वफ़सख़ लहु फ़ी क़ब्रिही वनव्विर लहु फ़ी। अब अरबिक सुनते हुए तो हो सकता है आप फोकस भी ना करें, लेकिन इसका तर्जमा देखिए कितना खूबसूरत है। और मुझे ये दुआ पढ़ते हुए हज़रत अबू सलमा पे रश्क आ रहा था कि दुआएं तो अल्लाह के नबी ने हमें बहुत सारी सिखाई हैं, मैयत की बख्शिश की दुआएं। आज के सबक में आगे हम बहुत सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ अबू सलमा का नाम है। तो अबू सलमा की कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे। आप अपने ऊपर नाम लेके सोचें कि अगर अल्लाह के नबी ने मेरा नाम लेकर मेरी बख्शिश की दुआ की होती तो मेरी किस्मत कितनी खूबसूरत थी। और ये भी आपको पता है कि नबूवत की ज़ुबान सच्ची होती है, अल्लाह नबी की दुआ को कबूल करता है। तो कहा उनको बख्श दे हिदायत याफ्ता लोगों में इनका मर्तबा बुलंद फरमा। यहाँ भी देखिए हिदायत पाए हुए लोगों में भी उनमें भी उसका मर्तबा बुलंद हो। ये क्या है, जैसे आप देखिए कि कुछ तो लोग दुनिया में खोए होते हैं ना, कुछ कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तरफ आते हैं तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे अमल हो रहा है, उनके लिए हिदायत के रास्ते खुलते हैं। उनमें से भी फर्स्ट आने वाला, जैसे कहीं भी स्टूडेंट्स होते हैं कुरान के या किसी क्लास के, तो उनमें जो फर्स्ट आता है वो उन सब में सबसे अच्छा है ना। ये मतलब है कि अबू सलमा ने हिदायत भी पाई है, तो आप हिदायत पाने वालों में इनको सबसे ऊपर कर दे, और इनके पसमानदगान यानी जो इनके पीछे हैं जिनको इन्होंने छोड़ा उनकी हिफाजत फरमा। छोटे छोटे बच्चे थे इनके, शायद 4 बच्चे थे उम्मे सलमा के, और आप देखिए कि शौहर की डेथ हो गई और अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि जो इनके पीछे लोग रह गए अब उनकी हिफाजत करें। या रब्बुल आलमीन हम सब को और मरने वाले को मुआफ़ फरमा, मैयत की कब्र कुशादा कर दे और इसे नूर से भर दे। ये अल्फाज जो हैं ये सही मुस्लिम के हैं। तो अब आज मैं और आप ये दुआ मांगे तो क्या करें, ली अबी सलमा की जगह अपनी मैयत का नाम ले लें। हमारे यहाँ भी तो डेथ होती रहती है ना, किसी का बाप होता है तो ली अबी कह दे। अब देखिए थोड़ी बहुत अरबी तो आनी चाहिए ना हमें, काकी हू और हाही हू और थोड़ा सा वाहिद जमा हाजिर गायब और इस तरह के सीखे पताओं, तो थोड़े से चेंज से फिर हम पढ़ सकते हैं ये दुआ। और ये दुआ आपको इंशाल्लाह ताला जो किताबों की दुआ है उसमें मिल जाएगी, मैयत की बख्शिश की दुआ है। फिर इसी तरह आप देखिए कि 3 दिन से ज़्यादा ना तो किसी रिश्तेदार और ना किसी अजीज़ की मौत पर सोग करना चाहिए, यानी द डेड लाइन सोग की 3 दिन है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो क्या है कि औरत जिसके शौहर की डेथ हो वो 4 माह 10 दिन तक सोग कर सकती है। इसको ज़रा सुन लीजिए, बड़ा अहम इशू है, इसी में थोड़े से इद्दत के मसाइल भी आ जाएंगे। रिवायत है हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा से, ये नबी सल्लम की ज़ौजा मुख्तरमा थी। क्या खुशकिस्मत वो औरतें थीं। देखिए आज भी जिस औरत का शौहर नेक है वो इस लज्जत को पा सकती है कि वो शौहर जो खुद उठ के फजर के लिए निकलें, जो तहज्जुद के लिए उठें, जो खुद भी उठें, दूसरे को उठाएं, जो हलाल हराम का फ़र्क रखें, उन औरतों के दिल कितने ठंडे रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि नबी की बीवियों के दिलों का क्या हाल होता होगा। आज आप देखिए कि जब सिस्टर्स कुरान पढ़ने पढ़ाने में लग जाती हैं तो कुछ अरसे के बाद फिर गम शुरू हो जाता है, शौहर नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे नहीं पढ़ते, घर में फुला नहीं पढ़ता, क्योंकि ईमान वाले को कभी ज़िंदगी में चैन नहीं आ सकता। बतवासो बिलहक की बतवासो बिसबर, पहले अपनी इसलाह की फ़िक्र होती है, थोड़ा सा अपने आप को बंदा सेट कर लेता है तो घर वाले, घर वालों के बाद ख़ानदान, फिर मोहल्ले वाले, और इसी सफ़र से फिर ज़िंदगी से इंसान चला जाता है। और यही तड़प होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तड़प ना हो तो इंसान तो खुद भी गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है और फिर भी कहता है क्या हर्ज है, सब गुनाह करते हैं। तो अल्लाह के नबी की बीवियाँ खुशकिस्मत थीं। यहाँ से एक साइड इश्यूज अपने लिए हम ले लें कि जब भी कभी अपनी बच्चियों के रिश्ते करें तो लड़के में 10 चीज़ें देखें लेकिन दीन को प्रायोरिटाइज करें। अगर इखलाक और दीन मिल गया तो आप देखेंगे कि दूसरी उसकी चीज़ों से भी इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे। और बाज़ दफ़ा देखा गया कि नयाबी तौर पर इंतहाई पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनके इखलाक अच्छे नहीं होते। तो बहरहाल आपकी बीवी कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखने वाली किसी औरत के लिए किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा और शौहर की मैयत पर 4 महीने 10 दिन से ज़्यादा सोग जायज़ नहीं है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। थोड़ी सी अगर आपने सीरा पढ़ी हो तो उम्मे हबीबा किन की बेटी थी आपको पता है? अबू सुफियान की बेटी थी। उम्मे हबीबा जो थी इनके वालिद का नाम अबू सुफियान था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी थी। अबू सुफियान का जब इंतकाल हुआ तो उम्मे हबीबा ने खुशबू मंगाई या रंग मंगाया, ये दो ही चीज़ें होती हैं जिससे इंसान ये फील कराता है कि आई एम नाउ बैक टू माई रूटीन लाइफ। और फिर इन्होंने वो खुशबू दिखा के लोगों को कहा कि वल्लाही मुझे आज खुशबू की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई इस वक्त इसकी चाहत है, लेकिन मैं सिर्फ इसको इसलिए लगा रही हूँ, इस खुशबू को या इस रंग को, कि मैं ये बता दूँ कि आज मेरे बाप का ख़त्म हो गया सोग, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं। हम कितने कितने महीने, 4 4 दिन पहले ईद आ गई अभी ईद नहीं करनी, शादी आ गई वो कैंसिल। बाज़ घरों में तुमने देखा क्या कि शादियाँ इसीलिए पोस्टपोन होती रहती हैं, अब लड़की वालों में कोई डेथ हो गई है आगे कुछ अरसे बाद लड़के वालों में आगे हो गई है, और क्या पता कि आप जितना आगे कर रहे हैं इसके बाद कोई और आगे आ जाए। ओनली 3 डेज, 3 दिन के अंदर घर की सिचुएशन नॉर्मल बैक टू दी रूटीन लाइफ होनी चाहिए। और सोग से भी मुराद काले कपड़े नहीं है। ऑफ कोर्स आप देखिए कि इंसान की तबीयत है ना, ये किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए टाइम लेता है। अब घर में हर बंदा जो मौजूद है, अगर उस वक़्त वो 3 दिन तक इकट्ठे हों, घर वालों को सब्र दे रहे हैं, सब्र की तलकीन कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन जो बीवी है 4 माह 10 दिन सोग से क्या मुराद है कि वो उसका टाइम पीरियड है, वेटिंग पीरियड है जिसको इद्दत कहते हैं। फिर उसके दौरान औरत जो है वो खुशबू, रंग, अच्छे कपड़े और इस तरह की चीज़ें कि जिससे दिल में इस तरह के जज्बात आते हैं वो नहीं करेगी, ये दैट्स इट। उसके अलावा कोई और ऐसा काम करना जो कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया, ये गोया के एक किस्म का उस हुक्म को ना मानना होगा। ये जो रिवायत थी ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है जिसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकता, यानी द स्ट्रॉन्गेस्ट नरेशन इन हदीस चेन इज़ बुखारी एंड मुस्लिम। तो बुखारी और मुस्लिम में जो रिवायत होती है उसको मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं, यानी द बोथ शेखान वाज मुत्तफ़िक़ ऑन दिस, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। तो बहरहाल इसी तरह एक और रिवायत नोट कर लीजिए, अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाहु अन्हो से ये रावी हैं, कहते हैं कि नबी सल्लम ने हज़रत जाफ़र की वफ़ात के मौके पर, यानी इनके वालिद थे जो, 3 दिन तक लोगों को आने जाने की इजाज़त दी। ओनली 3 डेज़। 3 दिन के बाद नबी सल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया आज के बाद मेरे भाई का सोग ना किया जाए। ये अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। क्या आपने सीखा? मैंने क्या सीखा? अगर आपके फैमिलीज में, शहर में कहीं कोई डेथ हो गई, ओनली विद इन 3 डेज, चौथे दिन आप आके उनको और रुला के और फिर लंबी बातें करना, इट्स नॉट अलाउड। हमारे यहाँ यहाँ देखा गया है कि मोस्टली पे जब कोई ऐसी मौका पे लोग नेक्स्ट वीकेंड्स का इंतज़ार करते हैं, छुट्टी होगी तो आएंगे। देखिए, ये तो आप अपनी रूटीन से आए ना, अगले को तो उस वक्त जरूरत थी। जस्ट लाइक इज दिस कि आई नीड वाटर, तो मुझे तो पानी अब चाहिए ना। आपके मैं वीकेंड पे आऊँगी और आपको पानी दूंगी। तजियत का मसला भी समझें कि उसका दिल बहलाना, उसको थोड़ा एंटरटेन करना, उसको खाना देना ला के, कुछ भी है। तो अगर 3 दिन गुजर गए, आप मत आइए। मैं खुद अपने ऊपर भी ये लेती हूँ, कभी पता चलता है दोस्तों साथियों में, इंसानी ज़िंदगी में उन्हीं 3 दिनों के अंदर किसी वक्त 10 मिनट 5 मिनट निकाल के चले। हमारा मसला ये कि फिर हमारे प्लान बड़े लंबे होते हैं ना, सारा दिन रहेंगे वहाँ, ये करेंगे वो करेंगे। ओनली 3 डेज़, खुद नहीं आ सकते, फ़ोन कर लें। बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि 3 दिन के बाद अगले से इस मौजू पे बात करके उसको मज़ीद दुखी करना, ये भी पसंदीदा अमल नहीं है। और हमारे यहाँ कहाँ 3 दिन, हम तो इस पे बहुत लंबी लंबी गैदरिंग्स करते हैं। ये भी रिवायत जो थी ये अबू दाऊद और नसाई की थी। अगली रिवायत भी है मोहम्मद बिन सीरीन से, रिवायत करता है कि उम्मे अतिया का बेटा फौत हो गया। अब सोचिए, बच्चा फौत हुआ है एक माँ का, 3रे दिन उन्होंने जर्द खुशबू यानी कलरफुल खुशबू मंगवा कर इस्तेमाल की, यानी आप कह लें कि फेस पाउडर या कोई ऐसी चीज़ जो चेहरे पे लगाएं, और फरमाया हमें शौहर के अलावा किसी और पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने से मना किया गया। बुखारी की रिवायत है। अब आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, पहले तो हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह सब के बच्चों को सेहत दे, आफियत दे, और कोई माँ अपने बच्चों का गम ना देखे। लेकिन आप सोचिए कि किसी के बच्चे की डेथ हुई और आप 4th डे गई और उसको मेकअप करते देखा, तो हम क्या बातें करेंगे? कितना सख्त दिल है, कैसी माँ सख्त है, इसका ये हाल है। और अगर चले अपना बेटा तो और बात है, ससुराली रिश्ते में किसी की डेथ हो, किसी की सास की डेथ हो, चौथे दिन आप जाएं और बहू मेकअप करके फिर रही हो, तो आप कहेंगे तौबा तौबा, ऐसी बहू जिसको सास का गम नहीं हुआ। भाई, आपको पता है कि उम्मे हबीबा नबी सल्लम की बीवी थी, इनके भाई का इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला बिन जाश का। 3 दिन के बाद बच्चे को भेज के रंग मंगाती हैं और कहती है वल्लाही इस वक्त इस रंग को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहकर इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरे भाई की 3 दिन ख़त्म हुए और मैं शोक के खात्मे का ऐलान करती हूँ। तो इससे क्या बात है, साइड पे पता चली कि अब बहू घर में है तो अब अच्छे कपड़े ना पहने। समटाइम ऐसा होता है, इधर शादी हुई 3-4 दिन के अंदर या 1 महीने हफ्ते के अंदर कोई डेथ हो गई, अब क्या है जी कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, कहीं जा नहीं सकती। इवन शादियाँ लोग रोक लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ बेवा औरत। अच्छा, इसमें बार बार खुशबू का तذکرہ हो रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस पर भी बात कर दूँ कि क्या औरत फिर खुशबूएँ कैसी इस्तेमाल करती हैं। तो इस पर एक और हदीस नोट कर लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत वो आराइश इस्तेमाल कर सकती है जिसका रंग खुला हुआ हो, यानी कलर लगा सकती है, जैसे आप देखें कि फाउंडेशन है, लिपस्टिक है, नेल्स पे अगर आप नेल पॉलिश को ऐसी लगाते हैं जिसमें आपकी नमाज नहीं अगर रुकती, यानी रंग लगाए और खुशबू दबी हुई हो, बहुत हल्की सी धीमी, जिसको खुद बंदा फील करे, औरत ये आराइश करेगी। जबकि इसके अपोजिट मर्द वो आराइश करेगा जिसकी खुशबू बिखरी हो, यानी दूर से भी आ सकती है लेकिन उस पर रंग नहीं हो। यानी मर्द फेस पाउडर नहीं लगा सकते, मर्द अपने चेहरे पे कोई एक्स्ट्रा लिपस्टिक या कोई आई शेड्स नहीं लगा सकते। तो यहाँ ये नोट कीजिएगा, क्योंकि जो औरत बहुत उठने वाली खुशबू लगा के निकलती है, तो हदीस में आता है कि बाहर गैर मर्दों के पास से जब वो इस तरह गुजरती है तो वो एक बदकार और एक फुखश काम करने वाली औरत गिनी जाती है। और अगर कोई पर्पसली ये सब काम करके मर्दों में से गुजर रहा है तो गोया के कहा कि उसको घर आके गुस्ल जनाबत करने की ज़रूरत है। बहुत सख्त इशू है, क्योंकि आप देखिए कि खुशबू एक खामोश इनविटेशन होता है। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल जो चीज़ अट्रैक्ट करती है इंसानों को वो खुशबू करती है ना, गुड स्मेल, मूड चेंज हो जाते हैं, स्मेल अच्छी होती है। तो आप सब भी अगर लगाएं तो क्या करें, क्योंकि हम सारे अपने अमल के लिए तो बैठे हैं, जिस्म पे लगाइए। इस्लाम की खुशबुएं क्या हैं, इसको फ़र्क देखिए, जूस ऑन योर बॉडी, लाइक जैसे एक डिओड्रेंट है, अगर आप बॉडी पर डायरेक्ट लगा रहे हैं, इतर हैं या अरब लोग आप देखिए कि ऑयल्स यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह बखूर एक चीज़ होती है कि अरब औरतों का सबसे फेवरेट जो खुशबू करने का तरीका है कि खुशबू वाली लकड़ी होती है उसको जलाती हैं और उसके ऊपर फिर अपने जिस्म को गुजारती हैं, लाइक जैसे बॉडी पे जहाँ जहाँ वो खुशबू लगेगी तो उसका जिस्म पे असर आता है। अब ऊपर जब आप कपड़े पहन लेते हैं तो वो तो आपकी बॉडी पर रही ना। अब जब ज़ाहिर है आप खुद हैं या आप घर में या अपने शौहर के पास हैं, जिसके पास आप होंगे उसको खुशबू आएगी ना, लेकिन कपड़ों पर खुशबू लगाना پرفیومز کی صورت میں اور خاص طور پہ باہر نکلتے ہوئے جو ابائے کو لگا لیتے ہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ اڑتی ہے، وہ جسم پہ نہیں ہوتی، وہ کپڑوں پہ ہوتی ہے. تو آپ ایسی خوشبو استعمال کیا کریں کہ جو بالکل آپ کو آئے، اور بیسٹ تھنگ اس میں یہ آئل جو، اور آج کل تو آپ دیکھیں اتنی خوبصورت اور اتنی گڈ سمیل والے عطر آتے ہیں کہ آپ پرفیوم کو استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا. تو بہرحال گھر میں اگر آپ الون ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، محرم ہیں، تو آپ گھر میں بھی خوشبو تھوڑی اٹھی بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اگر گھروں میں ایسے مکس لوگ رہتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو پھر اسے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سائڈ ایشو تھا، لیکن ظاہر ہے کہ موت کی باتیں کرتے ہوئے زندگی کی تو ضرورت ہے ہی ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو تعزیت میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جس گھر میں ڈیتھ ہو وہاں کھانا پکوا کر بھیجنا سنت ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے عبداللہ بن جعفر کی، کہتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ نے ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے، ایسا موقع آیا کہ وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. اب آپ ذرا اس بات کو سامنے رکھیے کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے وہاں آپ کھانا لے کے جائیں، اور کیا اس کا اپوزٹ کہ آپ ہم سب 100 لوگ جمع ہو گئے اور گھر والے بیچارے پریشان ہیں، ایک طرف ڈیڈ باڈی اٹھتی ہے، ابھی اس بیچارے کی قبر بھی نہیں تیار ہو رہی ہے، وہاں دفن ہوا اور گھر میں کھانے کھلتے ہیں. اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ. گھر میں صرف گھر کے قریبی لوگ نمبر ایک، اور جو دور سے آئے ہوئے، ابھی یہ ایشو آگے آئے گا تو آپ کا مور مائنڈ کھلے گا. ایک شہر میں رہتے ہیں، کسی کی ڈیتھ کی خبر ہوئی تو کیا کریں، وہاں جا کے کھانے کھائیں پکائیں؟ نہیں. آپ سب سے پہلے ابھی اس میں یہ فوکس کیجئے کہ ہم کھانا لے کے جائیں. اب یہ کھانا لے کے جانے والوں میں کوئی رسم، یہ سسرال سے آئے، یہ بہو کے گھر سے آئے، یہ میکے سے، اس نٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ لوگ موقع کا منتظر رہا کریں کبھی ایسا وقت ہو. اور کھانے میں کوئی ضروری نہیں کہ پھر آپ بازار سے کیٹر کروائیں اور حلوہ بھی بنوائیں، اور زردہ تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مرنے والوں پہ بناتے ہیں. بعض دیہاتوں میں معروف ہے کہ جب کوئی بڑی عمر کا شخص فوت ہو جاتا ہے تو زردہ پکاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ بڑی عمر کا ہو کے مرا ہے. بعض جگہ میں نے یہ سنا، یہ سب ہم نے اپنے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں سے سنا ہوا پاکستان میں، کہ وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی بہوؤں کو جوڑے ملتے ہیں، بیٹیوں کو جوڑے دیے جاتے ہیں. گویا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بہت پہن اوڑھ کے فوت ہوئے تو اب ان کو جوڑے دو. یہ صرف رسم ہے، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہتا. اس کے علاوہ دیکھیے کہ تعزیت کے موقع پہ بین کرنا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا اور ماتم کرنا، یہ سب منع ہے. ماتم تو اپنے کسی مرنے والے پہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ سوچئے کہ پھر کئی سال پرانی شخصیات کے نام پہ سال کے کچھ دنوں میں ماتم کرنا، اسلام اس کی کہاں اجازت دے سکتا ہے. حدیث سن لیجئے حضرت ابو مالک الاشعری سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زمانہ جاہلیت کے 4 ایسے کام ہیں جس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے. اب آپ اس کو ٹپس پہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ 4 کام جاہلیت کے تھے، یعنی بیفور اسلام چل رہے تھے، لیکن میری امت کے لوگ بھی یہ کام کریں گے. نمبر ایک، اپنے حسب پر فخر کرنا، یہ کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، اچھا آپ شیخ ہیں، او ماشاءاللہ، اچھا آپ گجراتی ہیں، آپ گجر ہیں، آپ فولا ہیں. آپ دیکھیں ہر بندہ اپنی ذات کو ہی بڑا بناتا ہے. ایون اگر ہم شہروں میں رہتے ہیں، مثال دیتی ہوں، ہمیں نہیں پتہ جاٹ کون ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ گجر کون ہوں گے، نارملی یہ کاسٹ ہے، لیکن آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اونچی کوئی ذات ہی نہیں ہے. ایون جن چیزوں کو دوسرے لوگ بہت ہی ہلکا بھی سمجھتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں. اور خاص طور پہ اس کا اظہار کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ رشتوں کے موقع پہ. بیٹیوں کو بڑا کر رکھیں گے، شادی نہیں کریں گے ان کی، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے خاندان کا لڑکا چاہیے. اور آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سب سے زیادہ آنریبل اینڈ ریسپیکٹفل اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو کبھی بھی رشتے ناطوں پہ خاص طور پہ اور باقی چیزوں میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہی سب اچھے ہیں. اور آپ فیل کریں گے جب ایک ذات کے لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں نا، تو دوسرے لوگ ان کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذات کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال دوسرا کام کیا ہے جس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے؟ حسب پر تانا زنی کرنا، تانے دینا، تیرا حسب نصب نہیں ٹھیک. بعض شوہر نسمجھی کے ساتھ بیویوں کو تانے دیتے ہیں، تیرے تو ماں باپ ہی ایسے ہیں. بعض ساسیں اپنی بہوؤں کو تانے دیتی ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہومزۃ اللومزہ قرآن میں آتا ہے، ویل لکل ہومزۃ اللومزہ، کہ ایسے لوگ جو تانے دیں، منہ پہ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کریں، یہ درست نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا لماس جو ہے قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا، کیونکہ کتے کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ بھونکتا رہتا ہے دوسروں کے سامنے. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھونکنے کی، ऐसे ही हर एक के साथ बोल रहे हैं, बुरा समझ रहे करें, तो ये काम नहीं करने का। तीसरा काम क्या, सितारों से बारिश तलब करना। दौरे जाहिलियत में लोग सोचते थे कि ये जो बारिश होती है ना, ये सितारों के खुदा के खुश होने से होती है, ये एक शिरकी किस्म है। एक रात बारिश हुई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कुछ लोग सुबह इसकी वजह से मोमिन होंगे और कुछ काफिर हो जाएंगे। कहा अल्लाह के नबी ये कैसे? कहा मोमिन कौन है? वो कहेंगे कि बारिश अल्लाह के हुक्म से हुई। और काफिर कौन होंगे? जो कहेंगे फलां सितारे ने हम पे बारिश कराई। तो आप देखिए, आप इसमें सारी पेमिस्ट्री जो फोरकास्टिंग होती है इस टाइप की, एक ही होती है वेदर चैनल्स जो आज आम है, वो इसमें नहीं आता। और ना आप उससे इतना इम्प्रेस हुआ करें, उन्होंने गैजेट्स लगाए हुए हैं, अपनी मशीनें छोड़ी हुई हैं, तो किसी मशीन को लगाकर कोई फ्यूचर की खबर ले लेना ये गैप नहीं है। जैसे आज अल्ट्रासाउंड है तो माँ के पेट में कौन सा बच्चा है, बेटा है बेटी है, अगर कोई डॉक्टर बताए और वो ठीक निकले तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने पेट के अंदर एक मशीन लगा के देख लिया। गैब का ताल्लुक क्या होता है कि बगैर किसी टूल को इस्तेमाल किए हुए किसी को ये समझना कि इसको गैब की बात समझ आ गई है। फिर चौथी चीज़ क्या है कि मरने वालों पर बैन करके रोना। बहन करने से आप समझते हैं आवाज़ के साथ रोना। बाज़ लोग बाल नोचते हैं, बाज़ कुछ करते हैं। आपने फरमाया कि बहन करने वाली औरत नहीं मरेगी, अगर वो मरने से पहले तौबा ना करे तो क़यामत के दिन उसे गंधक का पजामा और खुजली यानी ख़ारिश का कुर्ता पहनाया जाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और अगर आप नोट करें कि जो सज़ाएं बताई गई हैं ना, उनका एक्शंस के साथ बहुत ताल्लुक है। जब कोई इस तरह के काम करता है तो उस वक्त भी तो वो इसी तरह ही हरकतें कर रहा होता है ना, तड़प रहा है, बाल नोच रहे। मैंने खुद किसी को देखा जब सडनली भाई की डेथ हुई तो अपने बाल औरतें नोच रही थी इस तरह से कि हमने ये खबर क्यों सुनी है। तो क़यामत के दिन आप सोचिए कैसा मंजर होगा कि ख़ारिश करता हुआ ऐसा बंदा अपने आप को सबके सामने महसूस करता है। सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहिए। अल्लाह ताला ने कभी भी किसी से अगर कुछ लिया है तो उसके बदले में उसको ज़रूर दिया है। इसी तरह हज़रत उम्मे अतिया फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैत लेते वक्त ये अहद लिया था कि हम नौहा नहीं करेंगी। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अगर आप सूरत मुमताहिना पढ़ें, कुरान पाक में 28वें पारे में आती है, तो उसमें बैत के पूरे अल्फाज मौजूद हैं कि जब कोई मुसलमान होता था तो किन किन कामों के करने और ना करने का हुक्म है। तो आप देखिए उसमें अल्लाह के नबी ये कहा करते हैं कि वादा करो कि तुम किसी मरने वाले पर बैन नहीं करोगी। तो इससे पता चलता है कि फिर कितना ज़्यादा ये उस दौर में आम रिवाज था। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या करें फिर? अब सवाल पैदा होता है, बैन नहीं करना, नौखा नहीं करना, ये कुछ नई बातें लंबी चौड़ी नहीं, तो क्या करें? ताज़ियत के वक्त खामोशी से आंसू बहाना या रोना जायज़ है। देखिए दिल में दुख होता है तो फिर इंसान उसके बारे में सोचते हैं ना, और ये बात पीछे हदीस नंबर 75 में हम पढ़ भी चुके हैं, खामोशी से रो लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए, सहाबा में अबू बकर और उमर भी रोए थे एक सहाबी की डेथ पे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अहले मैयत को बड़े या छोटे खाने का एहतमाम करना मना है। बाज़ लोग कहते हैं आज बड़ा खाना है, आज छोटा खाना है, तीसरे दिन बड़ा खाना करते हैं लोग कुल के नाम पे, और इसी तरह 10वें दिन दासे के नाम पे, 10वें के नाम पे, फिर पहली जुमेरात आती है तो जुमेरात के नाम पे, फिर 40 दिन गुजर जाते हैं तो फिर तो बहुत ही बड़ा खाना होता है। तो ऐसे तमाम काम जो हैं इनकी शरीयत में कोई सनद नहीं है। रिवायत सुन लीजिए, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अलबजल्ली जो हैं ये फरमाते हैं कि मैयत दफन करने के बाद अहले मैयत के घर जमा होना नंबर एक, और इनके यहाँ खाना खाना हम नौहे में शुमार करते थे। यह अहमद और इब्ने माजा की रिवायत है। यानी इतना नापसंदीदा था सहाबा को यह अमल के गोया के नौहा करना और मैयत वाले घर में दफन के बाद बैठ के खाने खाना इतना नापसंद करते थे। अब आप सोच सकते हैं आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं सिर्फ इस एक हदीस पे अमल करें। इधर मैयत उठी, उधर सब उठ जाए, सिर्फ क्लोज सर्कट में घर के जो थोड़े से लोग हैं। आप देखिए कि खाना कोई भी लाए, खाने घर में ही पकते हैं ना, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हमारे घरों में इतनी जगह नहीं होती कि ऐसी एक्सीडेंटल मौतों के वक्त के लिए तैयार हो। जिस घर में हर चीज़ अपनी जगह पे है, 100 लोग आ गए, मिसाल है कि किसी ससुराल से खाना आ भी गया, खिलाना तो इधर ही है ना, कुर्सियाँ उठाओ, मेज़ उठाओ, बर्तन किधर हैं, कर्टन गंदे होंगे, कारपेट बिखरेगा, और घर वाले सदमे में, और फिर आ के लोग पूछ रहे होते हैं कारपेट किधर है, प्लेन। अब सारा कुछ तो उस वक्त बाजार से नहीं आता ना, जगह बना रहे हैं, फर्नीचर उठा के बाहर रख रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, कुछ हो जाए। सिंपल तरीका है, मैयत के दफन से पहले सब आई में बैठे, इधर मैयत उठी, आप सब अपने अबाए उठाएं और निकल जाए। थोड़े से घर के लोग हो जाएंगे अपने करीबी, थोड़ा सा इतना को खाना तो पकाना और खाना कोई मसला नहीं है। नंबर एक फ़ायदा क्या होगा कि अरेंजमेंट्स इजी हो जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा जो बड़ा अहम है हम औरतों के नाते से। अमूमन औरतें जब इतनी लंबी लंबी सिटिंग्स रखती हैं मैया तले घर में, तो बातें उसकी बेटी उसका बेटा उसका शौहर उसकी बीवी उसकी सास करे तो क्या करें। बाज़ दफ़ा लोग बीच में गुठलियाँ रख लेते हैं या सपारे रख लेते हैं, लेकिन सामने सपारा भी है हाथ में और बीच में बात आना जी वो आई है, ये इनकी बेटी उधर है, ये वो है, अच्छा फिर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगी। ऐसा कभी सुना आपने या देखा? गुठलियाँ पढ़ रही ना तो पढ़ रही होती है और सब तरफ देख रही होती है और कान रखे होते हैं। डजंट मेक एनी सेंस। खामोशी से उठिए, बावकार चले जाए, अगले दिन फिर दिल करता है 3 दिन आते रहें, 15 मिनट से 20 मिनट, दैट्स इट। खाने खाना पीना चाय आ गई पानी, मैंने देखा है किचन होटल बन जाते हैं ऐसे मौक़ों पे। घर की औरतें बेटियां बेचारी चाय बना बना के थक जाती हैं और अनयूजल किस्म का खर्चा होता है जो किसी नाम में भी नहीं आता। अमूमन हम कहते हैं कि शादियों पे खर्चा होता है ना, वो एक खाना होता है। मुझे किसी की बात याद आती है कि अचानक बाप की डेथ हुई और 10 दिन तक रिश्तेदार घर भर आ रहा, और वो यंग बच्चे थे अभी, बाप के साथ कारोबार में नए नए बैठे थे और बाप की सडन डेथ हुई। 10 दिन खाने, 20-20 डबल रोटियां और अंडों की दर्जनों की दर्जने, और फिर 10-10 मुर्गियां, सारा दिन होटल था। कि जब 1 हफ्ता 10 दिन गुजरा तो क्लोज सर्किट में बैठे हुए वो बात कर रहे थे कि आपको होता है कि इन दिनों में घर में कितने लाखों की ग्रोसरी आ गई है, कैन यू बिलीव। और वो किसी नाम पे भी नहीं आएगी, बल्कि ऐसे वक्त में भी मैंने लोगों को पिकी होते हुए देखा है, मैंने ये नहीं खाना मैंने वो नहीं खाना, तो ये नहीं करना। अब ये तो बातें थी करना क्या है, अब सवाल पैदा होता है कि ताज़ियत के मुतल्लिक वो उमूर जो सुन्नत से साबित नहीं है, और बल्कि मैं उसमें इजाफा कर लूँ कि लेकिन आज हमारे कल्चर में उसकी झलकियाँ दिखती हैं, वो कौन सी हैं, ये नोट कर लीजिए। ये छोटी सी चेकलिस्ट है जो हम सब के लिए इस सूरत से बनेगी कि हमने ये काम नहीं करना है। सब केयरफुली सुन रहे हैं, कल ये ना कहें कि हम ये सुन के आए थे कि ये करना है, नहीं, अब हम जो बातें करने लगे हैं ये कौन सी हैं जो नहीं करनी चाहिए। नंबर एक, ताज़ियत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना। अमूमन देखा गया कि जब कोई आता है तो फिर कहते चलो जी हाथ उठाओ जी दुआ करते हैं, सुन्नत से साबित नहीं है। फिर दूसरा काम क्या कि ताज़ियत के लिए हाथ उठाकर सूरह फातिहा पढ़ना। इसको आम तौर पे लोग क्या कहते हैं, फातिहा ख्वानी। मैंने पहले नहीं कभी देखा था, पिछले 2-4 साल में कुछ ऐसी जगहों पर रहने और जाने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ लोग ख़ास तौर पे इस काम के आदी होते हैं तो वो फिर मैयत जो भी नया आए, यानी बाद में 10 दिन 15 दिन तक भी जो लोग आते हैं, कोई नई फैमिली आती है, चलो जी हाथ उठाओ, फिर वो भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ा? सूरह फातिहा पढ़ के दुआ मांगी। कभी आप सूरह फातिहा पे तर्जमे पे गौर करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सूरत फातिहा की ज़रूरत तो जिंदों को है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, प्लीज़ शो अस द राइट पाथ, तो वो तो चले गए अपने इंजाम पे, अब आप उनके लिए कौन सी दुआ करें। मैं तो कहती हूँ अगर आप कर सकें तो ऐसे मौक़ों के लिए सूरह फातिहा की तफसीर की सीरीज अपने पास रखा करें, और वो जाके एक एक दे दें कि फातिहा करनी है ना ये तफसीर सुन लो। और सूरत फातिहा की तफसीर इतनी स्ट्रांग है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर 20 दफ़ा भी कराई है तो हर दफ़ा उसमें नए कई नुक्ते मिलते हैं। यानी लोगों को इल्म दीजिए, हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई मरे और जाके उसके लिए सूरह फातिहा पढ़े। आप ज़िंदगी में लोगों को इल्म से जोड़िए, तो जब आप ज़िंदगी भर इल्म लेते हैं और कुरान सीखते हैं तफसीर सीखते हैं तो आप बताइए कि क्या हमारी कब्र में इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वक्त नियत करते हैं कि हमने इस कुरान के लिए कुछ वक्त ज़िंदगी का लगाना है। आज एक छोटा सा टॉपिक सुन के हमें अमल की इतनी बातें मिल रही हैं, तो सोचिए वो दिन कैसा होगा जब आपके सीने में कुरान होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन ऑन साइट 20 मौके आपके पास भी मौजूद होंगे कि जहाँ आप कुरान सीख सकते हैं। और एक दफ़ा तो कम अज़ कम हम ये कह सकें कि हमने अपनी ज़िंदगी में सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक सीखा। फिर अगली चीज़ जो नहीं साबित सुन्नत से वो क्या है कि ताज़ियत के लिए आने वाले आदमी का पहले से मौजूद अफराद को बार बार इज्तमाही दुआ की दरख्वास्त करना। ये होता है पूड़ी डालना कहते हैं ना, पूड़ी डली होती है, अब मर्द बैठे हैं 10-5, वो आए बैठे गए, अब जो नया बंदा आता है ना तो वो जो पहले से नया आता कहते हैं वो जी पहले दुआ कर लेते हैं फिर बात करेंगे, दुआ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं। फिर इसी तरह 3 दिन से ज़्यादा अहले मैयत के घर या किसी दूसरी जगह बैठने का अहतमाम करना, जिसको फूड़ी डालना कहते हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। आज हमारा हाल क्या हो गया कि किसी जगह थोड़े से लोगों को बैठ के कुरान पढ़ता देखें तो लोग कहते हैं क्या कोई यहाँ डेथ हो गई है। आज ये हाल हो गया कि लोग मिल के कुरान पढ़ने को एक किस्म की रस्म बना के मौत के साथ जोड़ते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि वफात के बाद पहली शबे बिरात या पहली ईद के मौके पर नए सिरे से ताज़ियत और सोग का अहतमाम करना। ये आपने सुना है, पहली ईद आई है अब फलां को मिलने जाना है आज, क्यों भाई आज उनकी पहली ईद है, चाहे 8 महीने पहले डेथ हुई थी, अब आप जाके उनको दोबारा सारे गम याद दिला रहे हैं, ये नहीं करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज़ लोग कहते हैं हम इस साल ईद नहीं करेंगे, क्यों, वो इस साल फलां का इंतकाल हो गया था। देखिए अगर इस तरह लोगों की मौतों पे चीज़ें डिले होती तो आप देखिए कि इस्लाम तो एक इज्तमाईयत का दीन है ना। नबी सल्लम के दौर में जंगों में सहाबा करम शहीद होते रहे, गज़वे बदर में हुए, गज़वे उहद में हुए, अगली जंगों में कुछ ना कुछ हुए, अल्लाह के नबी के अपने प्यारे फौत हुए। हज़रत खदीजा जिनसे आपको इतनी मोहब्बत थी कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे आपकी किसी बीवी के साथ आर नहीं आती थी जो कि हज़रत खदीजा से आती, कि अल्लाह के नबी ने उनके मरने पे ये सब कुछ किया। चले जो पहले आपके रिश्तेदार फौत हुए, माँ और दादा और फुलाम चचा वगैरह, उनको तो पीछे कर दीजिए ना, उस वक़्त इस्लाम नहीं था आया हुआ, फी ज़ुबाना गरम गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने के बाद क्या किया, वही हुज्जत है ना। कुरान पाक में 3 से ज़ायद मकामात पे आता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की सूरत में बेहतरीन उस्वा हसन है। आपके प्यारे चचा की शहादत हुई ग़ज़वे उहद में हज़रत हमज़ा की, आपने कहा कि हिंदा मेरे सामने ना आया करो, तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपना चचा याद आता है। इतना सदमा था, आपके 3 रिश्ते थे हज़रत हमज़ा से, चचा भी थे, आपके दूध शरीक भाई भी थे और आपके हमजोली आपके दोस्त भी थे, सदमा था। आपने बद्दुआ की कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत ना देना, इन्होंने ये किया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया उस बद्दुआ से, इसके बावजूद कोई सोग नहीं है। सुन्नत में ज़िंदगी को रखेंगे तो आसान और ख़ूबसूरत होगी।